प्रियल शर्मा वहां से निकली तो आलिया से टकरा गई। उसके चेहरे की खुशी देखकर आलिया को सब समझने में देर न लगी। आलिया ने प्रियल को परेशान करते हुए कहा, ओ तो नींद खुल गई मैडम की, या फिर कल रात किसी ने सोने ही नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं आलिया, प्रियल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा। आलिया ने कहा, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो तेरे ये गाल टमाटर जैसे लाल क्यों हो रखे? और भाई कहाँ है, बताना कल रात क्या हुआ था? हम कल रात साथ जरूर थे, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तू सोच रही है। आलिया ने कहा, हुआ नहीं तो हो जाएगा। अच्छा उसे छोड़, मेरी हेल्प करना यार, मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। तो परी की हेल्प ले लो ना, एमा नहीं आई है अभी तक, और निक भाई? प्रियल सबके बारे में पूछने लगी, क्योंकि सब आज के दिन ही आने वाले थे। आलिया ने बताया, एमा मैम नहीं आ पाएंगी, लेकिन एवा और निक भाई ज़रूर आ गए हैं, और कल रात रॉन सर और जीनत वापस आ चुके हैं, उनके साथ बेबी भी है, तो सब उसी में लगे हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। प्रियल ने वहां से जाते हुए कहा, फिर तो तुमने गलत इंसान से ये सब बात शेयर कर ली आलिया, क्योंकि मुझे भी बेबी से मिलना है। प्रियल रुकना यार, प्लीज़ प्रियल, आलिया ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। प्रियल प्रियल, प्रियल चली गई। आलिया प्रियल प्रियल चिल्लाती रह गई, जबकि प्रियल जल्दी से जीनत के पास चली गई। पैलेस के एक कमरे में सब जीनत को घेर कर बैठे थे, उसके हाथ में उसकी बेबी थी। जीनत ने प्रियल को देखकर कहा, ये लो रानी बेबी, आपकी सबसे प्यारी आंटी भी आ गई। प्रियल ने मुंह बनाते हुए कहा, कम ऑन यार, कम से कम आंटी को मत बुलवाओ, मासी या चाची भी चलेगा पर आंटी नहीं। रॉन ने हंसते हुए कहा, अब तो ये तुम्हें आंटी ही बोलेगी। एवा ने प्रियल के गले मिलते हुए कहा, कैसी हो तुम प्रियल? एवा और प्रियल दोनों एक दूसरे से काफी समय बाद मिल रही थीं। हालांकि निक ने उसे प्रियल से मिलने की बात बता दी थी, लेकिन निक ने मिशन की वजह से उसे उनके पास आने से मना कर दिया था। प्रियल ललक होकर कहा, अच्छी हूँ। प्रियांक ने कहा, देखो ना प्रियोदी, ये कितनी प्यारी है, जब आपके भी बेबी होगा फिर मैं तो उसे पूरे दिन अपनी गोद में लेकर रखूंगा। एवा ने कहा, हाँ अब ये लोग तो मिशन में बिजी हो गए, तो प्रियल और निक के बच्चे तो हम ही संभालेंगे ना। प्रियांक और एवा की बात सुनकर वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जबकि निक वहीं आ रहा था, उसने उनकी बातें सुन ली। निक ने अंदर आते हुए कहा, प्रियांक और एवा, हमारी बेबी को तुम दोनों तब लोगे ना जब मैं उसे छोड़ूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने काम से छुट्टी लेने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट मिशन है, उसके बाद हमारी बेबी को मैं संभाल लूंगा और प्रियल सारा काम देख लेगी। निक ने हंसते हुए इस बात को छिपा दिया कि प्रियल अब माँ नहीं बन सकती। परी ने सोचते हुए कहा, जीजू आप सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आई विश कि आप दोनों को लाइफ में सारी खुशियाँ मिले। अंकित ने कहा, वैसे हमें नहीं लगता कि हम अपने ब्राइड और ग्रूम को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बेचारे दोनों कब से हेल्प मांग रहे हैं और हम हैं कि बेबी के आसपास ही घूम रहे हैं। प्रियल ने कहा, मैं जाती हूँ। निक ने कहा, मैं जैन को देखता हूँ। निक और प्रियल दोनों एक साथ ही रूम से बाहर निकले। प्रियल जल्दी से वहां से जाने लगी तो निक दौड़कर उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। निक ने कहा, गुड़िया मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस करो कि तुम प्रियांक और एवा से बेबी या सर्जरी से रिलेटेड कोई बात नहीं करोगी। प्रियल ने कहा, आप कब तक उनसे सच छुपाओगे? निक ने कहा, जब तक मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल लेता, बस तुम किसी से कुछ मत कहना। प्रियल अपनी नज़र झुकाकर हामी भरी और वहां से आलिया के पास चली गई, तो वहीं निक जैन की हेल्प करने उसके पास चला गया। निकाह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, उधर जैन और आलिया भी तैयार हो चुके थे। मंडप को काफी खूबसूरती से सजाया गया था, आमने सामने की तरफ दो स्टेज बनाए हुए थे। रस्म के मुताबिक दुल्हा दुल्हन निकाह से पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, तो दोनों तरफ पर्दा लगाए हुए थे। बीच में काजी साहब के बैठने की व्यवस्था थी, उनकी एक तरफ दुल्हन तो दूसरी तरफ दुल्हे के बैठने के इंतजाम किए हुए थे। आलिया के अब्बू मिस्टर सिद्दीकी और उनके कुछ रिश्तेदार काजी साहब के पास बैठे थे। इनायत और परी आलिया को लेकर आईं, जबकि प्रियल कवा और जीनत उसके पीछे थीं। वहीं दूसरी तरफ जैन बैठा था, तो उसके पास रॉन अंकित और निक थे। काजी साहब ने निकाहनामा पढ़कर सुनाया। काजी साहब ने कहा, आलिया सिद्दीकी वल्ड नाजिम सिद्दीकी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अगर आपकी सहमति है तो तीन बार कबूल है बोलकर इस निकाहनामे पर अपने साइन कर दें। आलिया ने नजरें झुकाकर तीन बार कबूल है कहा। काजी साहब ने जैन से भी वही सवाल दोहराया। जैन ने मुस्कुराकर हुए कहा, कबूल है कबूल है कबूल है। इसके बाद जैन और आलिया सहित उन दोनों के दो दो गवाह ने निकाहनामे पर साइन किए और लीगली उनकी शादी रजिस्टर्ड हो गई। वहां मौजूद लोग एक दूसरे के गले मिलकर सबको बधाई दे रहे थे। काजी साहब ने कहा, अब निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल आईने में देखेंगे। जैन ने कहा, फाइनली मैं आलिया को देख पाऊंगा। निक ने उसे परेशान करते हुए कहा, पिछले 7 साल से देख रहे हो, वो कम नहीं है ना? अंकित ने कहा, आज देखने का प्लान कैंसिल करते हैं जैन, कल देख लेना। रॉन ने कहा, कम ऑन यार, बच्चे को परेशान करना बंद करो, ये हम तीनों में सबसे छोटा है तो तुम दोनों जानबूझकर इसे परेशान कर रहे हो। निक ने कहा, चलो अच्छा है, इसी बहाने में गुड़िया को भी देख पाऊंगा, कब से हाइड एंड सीख खेले जा रही है। रॉन ने हंसते हुए कहा, यहां भी इसे खुद की पड़ी है। एवा परी और इनायत आलिया को लेकर आई तो जैन निक अंकित और रॉन के साथ पर्दे से बाहर आकर आईने के सामने बैठे थे। आलिया ने लंबा घूंघट पहन रखा था, उस आईने को एक कपड़े से ढका गया था। जीनत ने कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल आईने में देखो, हाँ उसके बाद फिर जितना मन करे सामने से देख लेना। अरे ऐसे कैसे आईने में देख लेंगे, पहले जीजू को जूते छुपाने के पैसे देने पड़ेंगे, बाद में ही वो अपनी को आईने में देख पाएंगे। इनायत उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। असद ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है इनायत, हमारी शादी के वक्त आलिया ने पहले हम आईने में देखने की रस्म पूरी करने दी थी, बाद में ही जूता छुपाई गई थी। इनायत ने कहा, हम आपकी तरह भोले नहीं है, हमें अच्छे से याद है कि हमारी शादी में आपने इतनी मुश्किल से जूता छुपाई दी थी, हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें पहले पैसे चाहिए। अंकित ने कहा, हाँ तो तुम रहने दो, जूते देना, हम चलते हैं। चलो उठो जैन, वैसे भी जैन आलिया को कब से देख ही रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है एक दिन नहीं देखेगा तो। परी ने कहा, अंकित भैया ये आपकी बहुत गलत बात है, आपकी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आप जैन भाई के साथ ऐसा करो, इस बार मैं जैन की साइड हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। चलो इनायत बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगी, एवा बोलते हुए जैन की तरफ आकर खड़ी हो गई। निक ने कहा, तुम साइड हो जाओ एवा, और ऐसे कैसे तुम पैसे दोगी, जैन आलिया को देखे बिना रह सकता है ना जैन, जैन मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। नहीं भाई, वहां सारे आपस में बहस कर रहे थे कि तभी सामने से प्रियल अपना लहंगा संभालते हुए आई। प्रियल ने रेड कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। प्रियल ने कहा, जैन मैं तुम्हारे साइड हूँ, बताओ क्या करना है। और मैं प्रियल की साइड, बोलते हुए निक उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने प्रियल के पास आकर धीरे से कहा, लगता है आज मेरी जान लेने का इरादा है तुम्हारा।
प्रियल ने धीरे से कहा, पहले इनसे निपट लूं फिर आपकी बारी। मुस्कुराते हुए वो जैन के पास आई और कहा, हाँ तो कौन परेशान कर रहा है मेरे देवर को। प्रियल ने आईने से कपड़ा हटाया जिससे वे दोनों एक दूसरे को देख सके, फिर कहा, लो देख लो दोनों। प्रियल के आईने से कपड़ा हटाते ही जैन और आलिया ने एक दूसरे को आईने में देखा। जैन ने कहा, थैंक यू सो मच भाभी, कोई तो है यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए, इन लोगों का बस चले तो मुझे आलिया से दूर ही रखें। निक ने कहा, अब तुम पक्ष बदल रहे हो जैन, सोच लो तो तुम्हारा ही नुकसान है। जीनत आंटी, कल कौन सी रस्म होने वाली है, वो रिसेप्शन वाली रस्म को क्या बोलते हैं आपके यहाँ। जीनत ने बताया, जी वलीमे की रस्म, और उसके बाद रुखसती मतलब विदाई होगी। असद ने कहा, अब जब सारी रस्में हो गई हैं तो क्या हम शादी की दावत एंजॉय करने चलें। आईने में देखने की रस्म के बाद वो सब एक साथ खाना खाने गए। निकाह और सारी रस्में होने के बाद रात के 1 बजे आलिया रूम में जैन का इंतजार कर रही थी, जबकि बाहर सभी जैन को पकड़कर खड़े थे। प्रियल ने कहा, आप सब लोग बहुत बुरे हो, जाने दो ना इसे अंदर। निक ने कहा, हाँ जाने देंगे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है। मैं देख रही हूँ कि आज प्रियल कुछ ज्यादा ही जैन की साइड ले रही है, तुम जैन को बाद में संभालना, पहले अपना लहंगा संभालो, जीनत ने कहा। परी ने हंसते हुए कहा, प्रियूदी को अपनी सिचुएशन याद आ रही है इसीलिए वो जैन भाई को इतना सपोर्ट कर रही है। प्रियल ने परी को आंख दिखाते हुए कहा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए इन 5 सालों में, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। निक ने कहा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है गुड़िया, बिल्कुल सही कह रही है परी। कम ऑन निक, अब जाने दो इसे, क्यों जिद पकड़कर बैठे हो, अंकित बोला। निक ने जैन को पकड़ रखा था और अंदर नहीं जाने दे रहा था। निक ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता इन दोनों ने मेरी शादी के वक्त इतना गंदा सा रूम डेकोरेट किया था, बस मुझे उसका बदला लेना है। आलिया अंदर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी, वो बाहर आकर बोली, क्या यार भाइयों जैसी बात कर रहे हो, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। प्रियल ने कहा, तू बाहर कैसे आई, अरे ऐसे दुल्हन कमरे से उठकर बाहर नहीं आती है, कुछ तो शर्म हया करो आलू। एवा ने कहा, यार अब आप लोग मिलकर मेरे दोस्त को टॉर्चर कर रहे हो, जाने दो इस बेचारे को, कब से इंतजार कर रहा है। एवा के कहने पर जैन को सबने अंदर जाने दिया, तो वहीं सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। परी को नींद नहीं आ रही थी तो वो टहलते हुए बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि कबीर कल होने वाले रिसेप्शन की अरेंजमेंट देख रहा था। परी को देखकर कबीर मुस्कुरा दिया, जबकि परी उसे देखकर वापस वहां से जाने लगी। कबीर दौड़कर उसके पीछे गया। कबीर ने कहा, परी रुकिए ना प्लीज, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। परी ने कहा, हाँ बोलो कबीर, कुछ इंपॉर्टेंट था क्या, मुझे नींद आ रही है। कबीर ने कहा, हम आपको अच्छे से जानते हैं परी, जब आपको नींद नहीं आती तभी आप बाहर टहलने निकलती हैं, तो ये झूठ किसी और से ही बोलिएगा। जब तुम्हें बाकी सारी बात याद है तो तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकते हो कबीर, या जानबूझकर मुझे तकलीफ देकर बदला ले रहे हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, बोलते हुए परी की आवाज भारी हो गई। कबीर ने कहा, अब आप हमें गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी निक से बात हुई थी। परी ने कहा, देखो जीजू या दी के प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना, जब मैं पिछले 3 साल तुम्हारे बिना गुजार सकती हूँ तो आगे की लाइफ भी तुम्हारे बिना रहना सीख जाऊंगी। हाँ आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो फिर आपको हमारी कमी महसूस होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जब मेरी प्रियूदी ने जीजू से 5 साल अलग रहकर किसी और से शादी नहीं की, फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। बाकी तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है करो, हाँ मेरी फिक्र मत करना, अब मुझे आदत हो गई है। कबीर ने कहा, लेकिन हमें नहीं हुई है, हम तब भी आपके बिना नहीं रह पाते थे और आज भी आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। आपको हमें समझना होगा परी, प्लीज हमें थोड़ा टाइम दो, हम इस रिश्ते को सुधार कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। परी ने कहा, अगर तुम ये डिसीजन जीजू से बात करने के बाद ले रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ऑल लाइफ ये गिल्ट रहेगा कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ हो। बाकी ना मैंने तुम्हें तब गलत समझा था जब तुम मुझे बिना बताए इंडिया आ गए थे और ना ही आज गलत समझती हूँ। परी अपनी बात कहकर वहां से जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। कबीर के हाथ परी की कमर पर थे जबकि परी बस कबीर को ही देखे जा रही थी। कबीर ने कहा, आप लड़कियों ने जिद करने की कसम खा रखी है क्या? वहां आपकी बहन जिद पर अड़ी है तो यहाँ आप दोनों एक जैसी हैं? परी ने कहा, हाँ हम दोनों एक जैसी हैं, तभी शायद एक बार किसी से प्यार होने के बाद फिर से दिल लगाने का मन नहीं करता। परी, हम भी आपसे प्यार करते हैं और हमने आपकी जगह अभी तक किसी को नहीं दी, लेकिन इन 3 सालों में हमारी बीच की दूरी को कम करने के लिए आपको भी हमें टाइम देना होगा। आप तो कल रिसेप्शन के बाद यहाँ से चली जाएंगी? परी ने कहा, तुम चलो हमारे साथ। कबीर ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं निक से परमिशन लेकर कुछ दिनों के लिए आपको अपने पास रख सकता हूँ? प्लीज परी, हमारे लिए ना मत बोलिएगा। परी ने कहा, देखते हैं दी और जीजू क्या डिसीजन लेते हैं। अब छोड़ोगे मुझे? तुम पहले मेरे इतने करीब कभी नहीं आए हो तो मुझे अजीब लग रहा है। परी के कहते ही कबीर ने उसे छोड़ दिया। परी बिना कुछ बोले वहां से मुस्कुराते हुए ऊपर सोने चली गई।